ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। माइंड मैटर्स इस श्रृंखला में हमने काफ़ी सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं हम, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी बचे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी सोसाइटी में हमें दिख रहे हैं, और वो हैं अलग अलग तरह की एडिक्शंस। उनका क्या मन पर असर पड़ता है और किस तरह से जब वो एक हमारी आदत बन जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि पूरे परिवार और सोसाइटी पर उनका क्या असर पड़ता है, इस पर बात करते हैं। और आज हम स्पेशली जिस एडिक्शन की बात करेंगे वो है टबैको। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और हमारे साथ हैं जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति।
जनरली जो देखा जा रहा है कि टबैको इज नो मोर अ टैबू, इन द सेंस जितना ज़्यादा उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि वो हेल्थ के लिए कितना ख़राब है, जनरली हम देखें तो वो कम उम्र के में ज़्यादा जल्दी शुरू होना शुरू हो गया है। ये दोनों पैराडॉक्सिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने हैं सोसाइटी में, व्हाई इज इट हैपनिंग?
सी, वन थिंग वी नीड टू फाइनली डिसाइड फॉर आवर सेल्फ कि सोसाइटी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे कोई भी चीज़ बढ़ रही हो, आई ओनली नीड टू सी माई सेल्फ। यू नो, जस्ट बिकॉज एवरी वन इज डूइंग समथिंग इट डजेंट मीन इट्स राइट, एंड जस्ट बिकॉज नो वन इज डूइंग इट डजेंट मीन इट्स रॉन्ग। तो हमें पर्सनल, और इसमें तो खैर कोई डिस्कशन की भी बात नहीं है कि वो सही है या नहीं है, मेरे लिए अच्छा है नहीं है, कितना हानिकारक है, किस एस्पेक्ट पे खा, यू नो एवरीथिंग। इट्स ओनली इम्पोर्टेंट इज टू टेक अ पर्सनल डिसीशन एंड नॉट थिंक अबाउट व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क माई सेल्फ कि व्हाई एम आई टेकिंग इट। उसका रीज़न भी मेरे पर्सनल लाइफ में क्या है, शुरू हुआ होगा पीयर प्रेशर से, शुरू हुआ होगा जस्ट एज अ यू नो स्टेटस सिम्बल कि जी हम लेते हैं, इट मेक्स मी फील, बट आज वो मेरे मन पे, शरीर पे, आगे मेरे बच्चों पर, हर एक पर असर डाल रहा है। तो इस समय फिर हम ये सब नहीं सोचते कि जस्ट बिकॉज सब लोग ले रहे हैं, यू नो, हमने कहा सोसाइटी कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं, एंड एक्चुअली था कि हम कर रहे थे इसलिए समाज बना, इट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल ऑफ अस। तो अगर आज हम चेंज होते हैं तो एक दिन सोसाइटी ने भी चेंज हो जाना है, बट इम्पोर्टेंट इज आई डू इट फॉर माई सेल्फ।
हमारा क्या साइकी है, स्टिल वी गिव इन, वी स्टार्ट ऑल्सो, यू नो, चलिए एक को जिसको आदत है वो तो है ही, वी गिव इन टू द प्रेशर, वाई हम क्यों नहीं अपनी हेल्थ के प्रति और सोसाइटी की हेल्थ के प्रति, फैमिली की हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो पा रहे?
टोबैको के साथ तीन चार तरह की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक है कि इट इज लीगली सोल्ड, दूसरा है दैट इन सम वेज इट इज स्टिल सोशली एक्सेप्टेबल, तीसरा है कि इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, और चौथा है कि इसकी जो शुरुआत है और इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैंसर से पूरा जबड़ा ख़राब हो गया, पूरा हार्ट अटैक हो गया, या हाथों की उंगलियां पूरी तरह से गल गई और गिर गईं वगैरह वगैरह, उन दोनों के बीच का सफ़र बहुत लंबा है। तो जो शुरुआत करता है उसको लगता है कि अरे थोड़ी दिन के लिए ले रहा हूँ, किसी के साथ ले रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ, आज ही ले रहा हूँ, तो ये बाद में मेरे साथ नहीं होगा, बहुत पीऊँगा तो होगा वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर रियलाइजिंग इज कि करीबन एक तिहाई लोग, एडल्ट्स, किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। एक तिहाई, इट्स अ ह्यूज नंबर। और वैसे हम सिर्फ सिगरेट को प्रोटोटाइप समझते हैं, लेकिन और कई तरह की तंबाकू की चीज़ें हैं जो पता ही नहीं लगती, और जो कैंपेन्स हैं वो इस बारे में बात करती हैं कि जो सिगरेट का स्मोक है वो बुरा है आपके लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, दूसरे के लिए भी, लेकिन बीड़ी जो है उसके बारे में बात कम होती है, लेकिन बीड़ी से भी उतना ही हार्म है, पोल्यूशन का भी, दूसरे व्यक्ति का भी, मेरा अपना भी। तंबाकू खाना, तंबाकू पेस्ट जिसको गुल कहते हैं, या उसका मंजन कुछ लोग यूज़ करते हैं, या पान में मिला के जो खाया जाता है, या तंबाकू को वैसे ही चूने के साथ मिला के जो खाया जाता है, वो ऐसे तंबाकू हैं जो पता नहीं लगता है। उस वजह से, और कई बार ना लोगों को ये लगता है कि अच्छा सिगरेट पीने से ऐसा होता है क्योंकि धुआं अंदर जाता है, मैं तो सिर्फ मुँह में रखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो मुँह में रखता हूँ थोड़ी देर बाद फेंक देता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तंबाकू किसी भी रूप में अगर सेवन करना शुरू हो तो उसके उतने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं पूरे शरीर पर, प्लस कुछ स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो मुंह के कैंसर ज़्यादा, गले के कैंसर ज़्यादा। अगर आप पी रहे हैं तो लंग के कैंसर ज़्यादा, या एम्फाइसीमा जिसको बोलते हैं, यानी सांस की कुछ डिजीज़ेस। लेकिन इन दोनों से, खाने से या किसी भी प्रकार से मुंह में रखने से या पीने से, चाहे बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, उससे जो पूरे शरीर पर असर है वो सेम पड़ते हैं। एज एन एडिक्शन, तंबाकू इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली नोन एडिक्टिव सब्सटेंस।
अच्छा, मतलब सबसे जल्दी इसमें एडिक्शन होता है।
जो 100 लोग पीना शुरू करते हैं या खाना शुरू करते हैं, उनमें से करीबन 90 लोग उसमें अटक के रह जाते हैं।
अच्छा,
ऐसा बहुत कम पाया जाता है कि लोगों ने एक या दो बार पिया, अनलेस आपको कुछ खांसी हो जाए इतनी ज़्यादा कि आप ना लें, बट ज़्यादातर लोग। और जैसा सिस्टर शिवानी ने कहा कि पीयर ग्रुप के साथ हुआ, या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ तनाव में गए तो उस समय आपने ले लिया, एक फैशन है सारे ही ले रहे हैं मैं भी लूँ, लेकिन जब आपने उसको शुरू किया तो लॉन्ग टर्म में उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो सोचते नहीं हैं। उन सरकमस्टांसेस में शुरू किया, उसी में एडिक्शन हो गई और फिर उसे छोड़ नहीं पाते तो पोस्टपोन करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे, इस साल नहीं अगले साल। और शुरुआत में एक पर्दा सा भी होता था कि बड़ों के सामने नहीं पीना है, बाहर पीते हुए देखे गए तो अलग है, अब अगर परिवारों में ही कोई बड़ा पी रहा है तो वो पर्दा भी कम हो गया और उस वजह से एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई, तो इसलिए ये बढ़नी शुरू हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा कि इंटरनेशनली मेल्स ने थोड़ा छोड़ना शुरू किया, फीमेल्स ने बढ़ाया। एडल्ट्स ने छोड़ना शुरू किया तो बच्चों में और एडोलेसेंट्स में बढ़ा, और कुछ तरह के तो स्पेशल एडवर्टिजमेंट्स इन पॉपुलेशंस के ऊपर हैं, व्हाई शुड यू बी लेस देन अ मैन, सो इक्वलाइज स्मोक अ सिगरेट। तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो जा रहा है, हालांकि उन पॉपुलेशंस की बहुत स्पेशल इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ डैमेज। अगर हम एडोलेसेंट्स को देखें तो जब उनकी ग्रोथ हो रही है उसमें जब सिगरेट या तंबाकू का सेवन शुरू होता है, और अनफॉर्चुनेटली स्पेशली वो बच्चे जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनमें इस चीज़ का सेवन अगर शुरू हो जाता है तो ऑलरेडी मैल नरिशमेंट है। और जो ग्रोथ के लिए, तंबाकू आपके भोजन को पचाने की प्रक्रिया को कम करता है, जो आपने खाया है वो पूरी तरह से आपके शरीर में लगे इसको कम करता है, और जो हार्मोन्स हैं उनको सही तरह से नहीं चलने देता। प्लस जो उम्र होती है एडोलेसेंस में, जहाँ पे कि आप फिजिकली एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए, तो ये आपके स्टेमिना को कम करता है। और जो लोग अपने लुक्स के लिए कॉन्शियस हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि ये आपके कम्प्लेक्शन को ख़राब करता है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है इंक्लूडिंग इन द फेस वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये हार्ट को भी धीरे 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 ख़राब करना शुरू करता है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है उसको कम करना शुरू करता है।
कैसे? जो निकोटीन है वो ब्लड में चली जाती है।
टबैको में जो निकोटीन है वो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है और बहुत ही जानलेवा सिद्ध हो सकती है। एक्चुअली एक ही सिगरेट में इतनी निकोटीन है कि अगर वो सीधी ब्लड स्ट्रीम में चले जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तंबाकू को पहले चूहे मारने की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और एक्चुअली हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा तंबाकू बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कर ले तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो तंबाकू के साथ जो निकोटीन है उसी के साथ में टार नाम से सब्सटेंस है, जो एक काला सा सब्सटेंस है ग्रीस जैसा, वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों के ऊपर जाके चिपक जाता है और जो ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है वो नहीं पूरा होने देता। निकोटीन जाके शरीर की जो ब्लड के वेसल्स हैं उनको सिकुड़ा देता है और उसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है। वो ब्लड की सर्कुलेशन जब हार्ट में कम होती है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है और हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। जो उंगलियां हैं पैर की और हाथों की, उनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वो धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती हैं इन डोज जो कि बहुत समय से ले रहे हैं। ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और उस वजह से ऐसा पाया गया है कि बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, चाहे वो स्ट्रोक्स हैं, चाहे वो डिमेंशियाज हैं, वो स्मोकर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब मैंने इसको लिया तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होता। कुछ देर के लिए आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है, तो उस समय में आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उस तंबाकू के निकोटिन का असर कम होना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे एंग्जाइटी फिर बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। उसको कम करने के लिए हम फिर से लेते हैं, वो फिर से बिल्ड होती है, और ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है। तंबाकू में करीबन 400 ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, यानी जिनसे कैंसर फैलता है।
आज हमें दिख रहा है कि टीनेजर्स एंड एडोलसेंस जो हैं वो ले रहे हैं, इज़न्ट इट वेरी हार्मफुल फॉर देम? ये तो बहुत खतरनाक है।
ये एक्चुअली उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल इसलिए भी है क्योंकि उनकी लंग कैपेसिटी बहुत कम है।
हाँ,
तो जब वो सिगरेट का धुआं लेते हैं, लंग्स छोटे हैं, तो उन्हीं के अंदर वो जहर फैल रहा है, और वो फिर धीरे धीरे शरीर पर असर कर रहा है, और ज़िंदगी में जितना जल्दी उसका असर होना शुरू हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा था ये उतनी ही जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी। टबैको इंसिडेंटली इज़ वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट्स नोन जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को भी ख़राब करता
है।
यानी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर मेल या फीमेल पी रही हैं, खासतौर पे मेल, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, शुक्राणु है जो कि अगली जनरेशन में जाने हैं, उसमें डैमेज होनी शुरू हो जाती है।
मतलब अगर आज एक लड़का सिगरेट स्मोक कर रहा है, चाहे वो आज 14 साल का है, लेकिन जब वो फिर फादर बनता है तो ये चांसेस हैं कि उसके बच्चे में भी वो जेनेटिक
प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसकी जो हेल्दी जीन्स हैं वो ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। अगर कोई बच्चा आज सिगरेट पीना शुरू करता है और सालों साल पी रहा है तो धीरे धीरे उसके शरीर पर तो असर आता ही है।
हाँ।
लेकिन जो उसके शुक्राणु हैं जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन ने पैदा होना है, जब वो फादर बनता है, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं।
किस तरह के बदलाव?
वो बदलाव में जो बेबी पैदा होगा उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो सिगरेट पीने के चांसेस बढ़ेंगे, इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी बढ़ सकती हैं।
अच्छा।
तो ये नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है, आपकी की हुई गलती आपकी अगली जनरेशन को भुगतनी पड़ सकती है, और ये शरीर के किसी भी हिस्से को कैंसर में ला सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ द सर्विक्स, जो कि सिर्फ कॉन्टैक्ट से नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं कि धुआं गए, लेकिन जब वो शरीर में फैल रहा है तो वो जो कार्सिनोजेनिक्स हैं, जो कार्सिन जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, वो शरीर के किसी हिस्से को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। एडोलेसेंट के साथ एक दूसरी पॉपुलेशन है महिलाओं की, जो कि इसका ज़्यादा सेवन हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा करने लगी हैं। उनमें वो सब चीज़ें तो होती ही हैं जो पुरुषों में होती हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो उनका फ्यूचर का बेबी है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उनकी जो ओवरीज का फंक्शन है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है, वो पूरी तरह से प्रॉपरली कंसीव नहीं कर पाती हैं, माँ बनने में उनकी प्रॉब्लम्स आती है, और अगर मान लीजिए वो गर्भ में ठहर भी गई तब भी जो बच्चा है, क्योंकि वो बच्चे को भी निकोटिन जब माँ अगर पी रही है या सिगरेट का पी रही है या तंबाकू का सेवन कर रही है, तो वो बच्चे में भी जाती है और बच्चे की ग्रोथ भी कम होती है, बच्चा छोटा पैदा होता है, बच्चा उतनी अच्छी तरह से नहीं पनप पाता अगर माँ ने उस समय सेवन किया या उस समय सेवन कर रही थी जो जब उसको कंसीव किया या जब वो पेट में था।
अगर उस दौरान नहीं स्मोक किया, उससे पहले अगर वो स्मोक करती आ रही है और कर रही है काफी टाइम से, तब भी बच्चे पे असर होगा?
अगर बहुत समय से उसका सेवन कर रही है तो उनको एक पीरियड देना पड़ेगा अपने शरीर को नॉर्मल होने का।
ओके।
और ये डिपेंड करता है कि कितने साल से और कितना ले रही है, लेकिन यूजली 6 months to 1 year मिनिमम पीरियड ऐसा माना जाता है जिसमें कि उनको अपने शरीर को ठीक होना, नॉर्मल होना, डिटॉक्सिफाई ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, नॉट ओनली फ्रॉम टोबैको, लेकिन तंबाकू का जो सालों साल का असर रहा है उसको ठीक होना.
सर शिवानी, यहाँ बहुत हमारी साइकी जो है वो प्ले करती है रोल, खासकर जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो सामने आ रही है बात कि पुरुषों ने उसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन बच्चे और महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैस्कुलिनिटी का प्रतीक बन गई थी और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है.
बहुत सारी चीज़ें जब हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वी स्टार्ट इट ओनली एज एक बार टाइम पास, हॉबी की तरह स्टार्ट होती है ना ये चीज़.
कई बार तो डिप्रेशन देना, मतलब चल लेट्स ट्राई इट आउट.
अच्छा, फिर वो हमारी आदत बन जाती है ड्यूरिंग एंग्जाइटी. अब सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल है तो एंग्जाइटी भी ऑफन होने लगती है, तो उस आदत को हम ऑफन यूज, बट वी डिड नॉट नो ऑल दैट उस दिन जब हमने शुरू किया था. सो एंड थोड़े टाइम के बाद वी रीच अ स्टेज वे वी से कि अब ये मेरी आदत बन गई, एंड देन दैट अडिक्शन, एंड देन मेरे से नहीं छूट रही है. बट आई थिंक इतना सब समझने के बाद इट्स टाइम टू अगेन वेक अप. हर चीज़ की एक अवेकनिंग तो हमें करनी है. एक, अगर हमने कभी उसको टच नहीं किया तो अपने आप से प्रतिज्ञा कि हमने उस तरफ जाना ही नहीं, लेकिन अगर लिया भी है तो फिर हमारे सामने इतने सारे आंकड़े वो भी हैं जो कहते हैं हमने एक दिन डिसाइड किया कि हमने नहीं लेना, एंड वी डिडंट डू इट. इफ वी सी दिस अबाउट वुमेन, कि महिलाएं अगर इतना ले रही हैं, मीन्स हमारी एक टाइम पास कहो या हॉबी कहो, एक कंप्लीट जेनरेशन की हेल्थ पर अफेक्ट करने वाली है. तो मॉरली ऑल्सो, मॉरली इट्स नॉट राइट फॉर मी टू डू इट. उसके बाद वो माँ जीवन भर अपने बच्चे की हेल्थ और खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होगी, तो क्यों ना वो अपना ध्यान अभी रखे. सो दिस इज समथिंग जो हमें अपने आप से बात करनी होती है. एंड ज़्यादातर अगर हम सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से ले रहे हैं, बिकॉज अ ह्यूज पॉपुलेशन इज स्टार्टेड विद सोशल एक्सेप्टेंस, बाद में तो हम अकेले बैठे भी वो ले रहे हैं. तो वो एक्सेप्टेंस अगर हम परिवार में एक दूसरे को दें, यू नो, मेक ईच अदर अंडरस्टैंड, तो लोग, बच्चे स्पेशली वुमेन, will not go towards this peer pressure acceptance. This is very important. Hame lagta hai ki to be accepted by the group, I have to do everything that the group is doing. To wo spiritual insights hame in cheezon mein bahut help karti hai. Ki you know, mujhe ye acceptance nahi chahiye. Acceptance chahiye mujhe meri nature ke liye, mere swabhav ke liye, mere sanskar ke liye. Usko pehle main accept karun, fir aur karenge. In cheezon ki acceptance mujhe auron se nahi chahiye. Ye hum jitna वर्क करते हैं अपने ऊपर, हमारी विल पावर बढ़ती है. जितना हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, हमें औरों की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं लगती. हमें नहीं बुरा लगेगा अगर लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे कि ओ तुम तो ओल्ड फैशन हो, या वट एवर पीपल हैव टू से, हमें वो बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे ना, एम्पावर्ड होंगे. तो देन वी विल ऑटोमेटिकली स्टे अवे फ्रॉम दिस. इसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर एक घर की आज माँ भी ले रही है, फादर भी ले रहे हैं, तो फिर बच्चों को रोकना, हाउ इजी इज इट गोइंग टू बी फॉर देम.
हमारे पास हक नहीं बचता ना,
हक नहीं बचता. आपने सही बात की. हाँ. क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब माँ या बाप लेते हैं तो उन घरों में बच्चे पहले छुपकर और फिर उनके साथ में ही आज के माहौल में लेना जल्दी शुरू कर देते हैं. बच्चों को खास तौर पे एडोलेसेंस में वो स्किल्स देना, एक तो स्पिरिचुअल स्किल्स है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें कि दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं, गलत बिहेवियर है, तो भी मैं अपने आप में इतना सक्षम महसूस करूं. लेकिन साइकोलॉजिकली साथ में स्किल्स ये भी देना कि मैं ना कैसे कहूँ, मैं अपने स्ट्रेसेस को बिना किसी ऐसे नशे के कैसे हैंडल करूं. अगर दूसरे ले रहे हैं तो मैं उनके साथ कटूं नहीं, लेकिन उस एक्ट में शामिल ना हूं, मैं उससे हट सकूं. और अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बिना किसी ऐसी चीज़ के डील कर रहा हूं, तो मेरे रोल मॉडलिंग से दूसरे भी सीखें और वो अपने आप को भी बदलने की कोशिश करें. तो वो एक चीज़ की प्रिवेंशन करने के लिए ज़रूरत हो जाती है. जो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनको तो फिर एक प्लान्ड तरीके से छोड़ना ज़रूरी है.
ये एक बात कि मैं तो सिर्फ एक सिगरेट स्मोक करता हूँ, मैंने तो सिर्फ एक पफ लिया, हुक्का पार्टी में गया, एक पफ लिया, इज़न्ट इट हार्मफुल?
मैं थोड़ा सा ही जहर रोज लूँगा. हाँ. ये वही बात. देखिए, फर्स्ट थिंग, ईच एंड एवरी सिगरेट रिड्यूसेज योर लाइफ स्पैन बाय अबाउट 10 मिनट्स, हर सिगरेट. और वो सिर्फ रिडक्शन ऑफ लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं. और सेम थिंग विद अदर, मैं सिगरेट को बाकी तंबाकुओं से अलग नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हमें क्योंकि वेस्टर्नाइज फिगर्स हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में तंबाकू इन फॉर्म ऑफ सिगरेट थोड़ा इंफॉर्मेशन है, लेकिन इट इज़ वेरी वेल नोन कि सब तंबाकू सेम डैमेज करते हैं, कोई किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से। ज़्यादातर लोग एक सिगरेट पर रह नहीं पाते, और अगर वो रोज़ एक सिगरेट ले रहे हैं तो वो रोज़ एक सिगरेट के एडिक्टेड है, लेकिन जब वो उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एडिक्शन की पहली बात यही है कि समय के साथ साथ आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और सेकेंड स्टेज होती है कि जब आप उसे छोड़ने लगते हैं तो आपको विड्रॉल्स होते हैं। अगर आप 10 पी रहे हैं तो उसको छोड़ने में ज़्यादा विड्रॉल होंगे, 5 पी रहे हैं तो थोड़े से कम होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आधे ही होंगे लेकिन थोड़े से कम होंगे। तो अगर आप थोड़ा भी ले रहे हैं तो पक्की बात है कि किसी ना किसी स्टेज पर आप ज़रूर उसको बढ़ाएंगे, और अगर नहीं भी बढ़ा रहे तब भी उतनी दौरान जितनी दौरान आप ले रहे हैं अपनी बॉडी पे डैमेज कर रहे हैं। तो सेफ टबैको जैसी कोई चीज़ नहीं है।
हाँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हर रोज़ हम जहर पी रहे हैं, जहर ले रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, अब बात करते हैं छोड़ने की।
ये समझ पाना कि आपका शरीर जो है, जिसको हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जब तक वो तंग नहीं करता, जब वो तंग करना शुरू करता है तो फिर हम जितना भी उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं शायद पहली वाली सिचुएशन में नहीं पहुंच पाते। कुछ चीज़ें हैं जिन पे अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, तो वो चीज़ों को छोड़ देना मेरे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है, और अगर आप एक परिवार वाले हैं तो अपनी फैमिली के लिए। तो पहला स्टेप है इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाना कि मुझे छोड़ना है। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी सक्सेस होगी, जितना लंबा पीते रहेंगे उतनी या खाते रहेंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। डैमेज होने के बाद बहुत लंबा पीरियड होता है बॉडी को नॉर्मलसी में आने का, तो उस डैमेज तक ना पहुंचने दें, क्योंकि उस डैमेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों को एक ही बार में छोड़ देना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उसका करीबन 10% रोज़ कम करना शुरू करें, और जब लास्ट का करीबन 10% रह गया तो उस समय पर उसको छोड़ दें। पहले 7 से 10 दिन थोड़े विड्रॉल्स होते हैं, लेकिन इतने विड्रॉल्स नहीं होते हैं कि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता। उस दौरान में आपको कोशिश करनी है कि आप खाना बहुत रेगुलरली खाएं, और स्पेशली फाइबरस खाना यानी फ्रूट्स, सैलेड, उबली सब्जियां, रोटी, ये ज़्यादा लें, क्योंकि कई बार तंबाकू बंद करने के बाद लोगों को पाचन क्रिया में मुश्किल होती है, प्रॉपर मोशन नहीं आता, तो उससे उनको बड़ा कष्ट होता। दूसरा, उन लोगों के साथ जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं आपको अपना साथ उस दौरान में डेफिनेटली छोड़ देना पड़ेगा। अपने कुछ ऐसे लोग जो नहीं पी रहे हैं, नहीं संभव सेवन कर रहे हैं, उनको अपने साथ में रखें, परिवार वाले या किसी और व्यक्ति को साथ में रखें। अगर तलब आए तो उसको पोस्टपोन करें कि अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोचेंगे, फिर याद दिलाएं कि अरे एक दिन हो गया, वेरी गुड, मैंने और आगे बढ़ गया हूँ इस प्रोसेस में, अपने आप को पैट ऑन द बैक कि मैं इसको छोड़ पाऊँगा। और आमतौर पे 7 से 10 दिन के बाद सिर्फ एक क्रेविंग रह जाती है, वो भी ख़ास तौर पे उस समय में जब आप पहले पीते थे, जिस समय पीते थे, जिस जगह पे लेते थे। अपने आसपास तंबाकू को किसी रूप में ना रखें। अध्यात्म से इसमें बहुत फ़ायदा होता। अभी राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा किस प्रकार से हम अलग अलग तरह के नशों को छोड़ सकते हैं, इसके बारे में शोध की मैं पर्सनली की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, और ये पाया कि करीबन 1000 लोग, वैसे तो लाखों लोग हैं जिन्होंने कि राजयोगी जीवन जीने के बाद तंबाकू और दूसरे नशों को शराब के भी और ड्रग्स के भी छोड़ दिया, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ रहे थे और बहुत अच्छे आए, और छोड़ने के बाद लोगों ने छोड़े रखा। क्योंकि इसमें जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपको एक तो अपने अंदर सुकून पैदा होना शुरू होता, फिर आप उन लोगों के साथ में होते हैं जो किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी एक रूटीन बदलनी शुरू हो जाती है। तो वो जो क्रेविंग का पीरियड है, उस क्रेविंग के पीरियड में आपको कुछ और सोच, कुछ और मेडिटेटिव टेक्निक्स मदद करती हैं, और वो जो शुरू का पीरियड है वो बहुत आसानी से आप उसकी मदद से छोड़ सकते हैं। और ये भी देखा गया कि अगर छोड़ने के बाद हम दूसरों को भी छुड़वाने में मदद करते हैं तो आप एक रोल मॉडल बनते हैं, और एक रोल मॉडल को फिर से गिरना अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने उस नए रूप में कि मैंने छोड़ दी, छोड़े रही है, तो उस रूप से भी वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद इंसान करीबन 2 से 4 हफ्तों में इस चीज़ से बाहर निकल सकता है। कुछ केसेस में अगर तलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या बहुत ज़्यादा विड्रॉल हो तो कुछ समय के लिए थोड़ी सी मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ऑफ कोर्स अगर तंबाकू से कोई डैमेज हुई है तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए जो भी दवा चल रही है वो चलते रहनी चाहिए जब तक वो चीज़ें नॉर्मल ना हो। और सबसे बड़ी बात कि छोड़ देने के बाद फिर उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि लोगों ने महीना छोड़ दी, 3 महीने छोड़ दी, साल छोड़ दी, फिर कहा कि एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई किया, वो तलब फिर से आई, वो साइकिल फिर से चालू हो गया। तो छोड़ देने के बाद अगर पीछे मुड़ के ना देखें, तो जब इंसान तंबाकू को छोड़ देता है तो महीने के अंदर ही जो शरीर है वो अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है, रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, अगर आपने पहले पीते थे तो वो डैमेज हमेशा रहेगी, लेकिन सही समय पर अगर छोड़ दें, डैमेज होने से पहले छोड़ दें, तो एक नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है।
और डेफिनेटली हम सबको उसका अधिकार है, यू नो, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।
Almost 1/3 population of the country is using tobacco in one form or the other. Tobacco, not only as cigarette smoking, but chewing tobacco, tobacco as paste, or eaten in any other form is equally harmful for the health. Tobacco is the most highly addictive substance. For every 100 people who start having it, 90 people get addicted to it. In the last few years internationally, men have started giving it up, but women have started having it. Adults are giving up, but children are starting it. Tobacco does not allow proper digestion of food, affects hormonal balance, reduces stamina, oxygenation of lungs, and blood supply to the heart. A single cigarette has enough nicotine to cause death if it goes directly into the bloodstream. Tobacco is one of the only products known which spoils our genetic material. It affects the healthy genes of the person and can be the cause of ill health or physical deformities in the next generation.